नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ ब्रासिलिया में बातचीत करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की अपनी यात्रा के रियो चरण को उत्पादक बताया। उन्होंने कहा है कि विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करेंगी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने आज पहली इंटर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट के भव्य समापन समारोह में भाग लिया। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% कोटा के लिए अधिवास मानदंड की घोषणा की। राज्य के युवाओं के समग्र विकास के लिए युवा आयोग का गठन भी करेगी। IMD ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पश्चिम और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया। टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। दर्जनों लोग अभी भी लापता है। खोज और बचाव अभियान जारी। और तीरंदाजी विश्व कप का 4th चरण आज स्पेन में शुरू हुआ। दीपिका कुमारी और ज्योति सुरेखा भारत के अभियान की अगुवाई करेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रासिलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से बातचीत करेंगे। श्री मोदी रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद कल रात राजकीय यात्रा पर ब्रासिलिया पहुंचे। ब्राजील की राजधानी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस भव्य से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी ने यादगार स्वागत बताया और प्रवासियों की अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उत्पादक रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने व्यापक विचार विमर्श किया है। उन्होंने इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति और ब्राजील सरकार द्वारा अपने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के माध्यम से किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि वैश्विक नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतुआ के निमंत्रण पर नामीबिया के विंडहॉक पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा होगी और भारत से नामीबिया की 3री प्रधानमंत्री यात्रा होगी। ये यात्रा 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी नामीबिया के संसद में भाषण भी देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है, खासकर तब जब वैश्विक संस्थाएं संकट का सामना कर रही है। कल रियो डी जनेरो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण व्यापार आर्थिक प्रबंधन और लक्षित राजकोषीय उपायों के संयोजन के माध्यम से भारत के प्रदर्शित लचीलेपन पर प्रकाश डाला। अपने रूसी समकक्ष एंटोन सिलुवानोव के साथ एक अलग बैठक में वित्त मंत्री ने विशेष रूप से वित्त क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों के साथ साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। उन्होंने अपने चीनी समकक्ष लेन फोवान से भी मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया है कि भारत और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में समावेशी वैश्विक विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा क्षमताओं को उन्नत करने और विस्तार देने के लिए नॉर्वे में विभिन्न परियोजनाओं की खोज कर रहा है। उन्होंने नॉर्वे के बर्गन में नॉर्दर्न लाइट्स CO2 टर्मिनल का दौरा किया और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के पूरे दायरे, विशेष रूप से नॉर्वे के ऊर्जा पेशेवरों द्वारा गहरे समुद्र में अन्वेषण को कवर करने वाली प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अभियानों के संचालन पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान तीनों सेना प्रमुखों ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय सेना के अनुसार इस संबोधन से संयुक्त परिचालन योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भविष्य के युद्ध परिदृश्यों में एकीकृत समुद्री और हवाई युद्ध पर विशेष जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केजी परनायक ने आज पापुमपारे स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में पहले इंटर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड फुटबॉल टूर्नामेंट के भव्य समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारतीय वायुसेना की इस पहल की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह टूर्नामेंट एक खेल प्रतियोगिता से कहीं बढ़कर है। यह राज्य भर में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले युवाओं के साथ सार्थक जुड़ाव का एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि खेल गतिविधियों में युवाओं को शामिल करने से अनुशासन, टीम वर्क और उद्देश्य को भावना को बढ़ावा मिलता है। ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय वायुसेना के कर्मियों और स्थानीय खिलाड़ियों सहित 8 टीमों ने भाग लिया। शिलोंग स्थित ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सूरज सिंह ने कल राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्र रक्षा तैयारियों और प्रभावी आपदा प्रबंधन, खासकर अरुणाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण भूभाग और मॉनसून के संदर्भ में व्यापक चर्चा की। इस दौरान ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने राज्यपाल को आश्वासन दिया है कि भारतीय वायुसेना राज्य के लोगों की सुरक्षा, प्रगति और कल्याण के लिए हर संभव सहायता देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के लिए राज्य सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है। फिलहाल सरकारी नौकरियों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% आरक्षण कोटा तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला लिया गया। अब तक 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की निवासी महिला उम्मीदवारों को ही मिल सकेगा। ये प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लाया गया था। बिहार से बाहर की महिलाओं को सामान्य उम्मीदवार माना जाएगा। कैबिनेट ने युवाओं, पलायन, उनके कौशल विकास और समग्र विकास के मामलों को देखने के लिए 7-सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी फैसला किया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अनुमान लगाया है कि अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से और पश्चिमी तट पर भारी से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार आज मध्य प्रदेश में भारी और अत्यधिक बारिश की संभावना है। मौसम एजेंसी ने अगले 2-3 दिनों तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि पूर्व मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अप्रत्याशित मानसूनी बारिश ने नागालैंड में व्यापक तबाही मचाई है। कई जिले में भयंकर बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही है। SDMA ने कहा है कि उसे घरों, सड़कों, पुलों, धान के खेतों और झूम खेती के क्षतिग्रस्त होने की कई रिपोर्ट मिली है। नेपाल के रसुवा जिले के अलग अलग इलाकों में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नेपाल चीन सीमा के पास लेंडे नाले में बाढ़ आने के बाद से फंस गए थे। संपर्क से बाहर हुए 37 लोगों में से अब तक 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी 15 लोगों की खोज की कोशिश जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेंट्रल टेक्सस में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, क्योंकि खोज के 4th दिन अधिक जीवित लोगों के मिलने की संभावना कम हो गई है। मरने वालों में से अधिकांश केयर काउंटी में थे, जहां कैंप मिस्टिक में 28 बच्चों की मौत हो गई है, जो कि क्रिस्टीन ऑल गर्ल्स समर कैंप था। और अब खबरें खेल जगत से। तीरंदाजी में पूर्व विश्व नंबर 1 दीपिका कुमारी और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम आज से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होने वाले तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारत की अगुवाई करेंगी। इस टूर्नामेंट में 16 सदस्यीय भारतीय दल भाग रहे हैं। टेनिस में विंबलडन 2025 के क्वार्टर फाइनल आज से शुरू होंगे, जिसमें शीर्ष सितारे आर्याना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज नावे दिन के रोमांचक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कल एकल मैच दो सेंटर कोर्ट पर और दो कोर्ट एक पर इस साल की चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के पहले सेट का फैसला करेंगे। और पुरुष एकल में गतविदेचा और दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज का सामना ब्रिटेन के कैरमन अनोरी से होगा, जबकि महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक आर्याना सबालेंका सेंटर कोर्ट पर गैर वरीयता प्राप्त जर्मन लोरा सेजमन से भिड़ेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।